ग्रंथराज श्रीमद भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 9। एतावान् अव्ययः धर्मः पुण्यश्लोके उपासितः यः भूत शोक हर्षाभयं आत्मा शोचति ऋष्यति। एतावानवयः धर्मः पुण्यश्लोकः उपासितः यः भूतशोक हर्षाभ्याम् आत्मा शोचति ऋष्यति। एतावानवयः धर्मः पुण्यश्लोकः उपासितः यः भूतशोक हर्षाभ्याम् आत्मा शोचति ऋष्यति। एतावान् अव्ययः धर्मः पुण्यश्लोकः उपासितः यः भूतशोक हर्षाभ्याम् आत्मा शोचति ऋष्यति। एतावान् इतने अव्ययः अविनाशी धर्म धार्मिक नियम पुण्य श्लोके अत्यंत पवित्र कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा उपासितः मान्य यह जो भूत जीवों का शोक दुख से हर्षाभ्याम तथा सुख से आत्मा मन शोचति पश्चाताप करता है ऋष्यति प्रसन्न होता है। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे द्वारा ये यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख से प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना जाता है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, प्राकृत गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो। आत्मवत सर्वभूतेषु दूसरों के सुख तथा दुख को अपना ही मानना चाहिए। इसी आधार पर बौद्धों की अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है, अहिंसा परमो धर्मः। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृथा पशु हत्या को बंद करना था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। एक ओर कोई पशुओं का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कहलावे, ऐसा संभव नहीं है। यह सबसे बड़ी धूर्तता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा हिंसा मत करो, किंतु धूर्त लोग अपने को ईसाई बताकर हजारों कसाई घर चला रहे हैं। इस श्लोक में ऐसी धूर्तता की निंदा की देखकर दुखी होना चाहिए, इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानववादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानवता के सुख का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में इसकी संस्तुति नहीं की गई। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु या वृक्ष, ये सभी जीवात्माएं श्री भगवान की संतानें हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनि रहम भेजो पिता पिता। हे कुंती पुत्र, समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियां इस भौतिक जन्म में जन्म लेने के कारण ही संभव हैं और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। इन जीवात्माओं के विभिन्न रूप उनके बाह्य वस्त्र हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्षपात नहीं करना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को ईश्वर का अंश मानता है, जैसा कि भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चैव पंडिता समदर्शना। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चंडाल में समानदर्शी होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूत। दिव्यत्व प्राप्त पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानव है, क्योंकि वह दूसरे को दुखी देखकर शोक करता है और अन्यों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होता है। वैष्णव बड़ा दुखी दुखी होता है, वे बद्ध जीवों की भौतिकता से दुखी होकर सदैव दुखी होता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है। बड़ा बढ़िया परपट है और बहुत ही बढ़िया जो है श्लोक का अनुवाद है। हरे कृष्ण। प्रसंग चल रहा है देवताओं और वृत्रासुर का युद्ध। चर्चा चल रही है कि आप इस वक्त जो है दधीचि मुनि से वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि उनकी अस्थियां प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज के श्लोक में कहते हैं, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख से प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। प्रश्न ये है कि धर्म क्या है, कौन से धर्म की चर्चा हो रही है, किस धर्म की बात हो रही है। पिछले श्लोक में कहा गया है, हे देवो, जो ना तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है, न धार्मिक नियमों या अक्षुण कुर्ति के महान कार्यों के लिए अपना नश्वर शरीर का बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। सो धर्म और धार्मिक नियम, तो आज जो है इसकी थोड़ी परिभाषा करेंगे कि धर्म क्या है और धर्म से कनेक्टेड धार्मिक नियम क्या है। धर्म जो है धी धातु से बना है, इसका अर्थ है धारण करने योग्य, जिसको आप अपने जीवन में लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो आपके जीवन का एक अंग बन जाता है, जीवन का अंश बन जाता है, जीवन के लिए एक एसेंशियलिटी, एक आवश्यकता बन जाती है, उसको जो है आप धर्म कहते हैं। परंतु धर्म क्या आवश्यक है आपके लिए, क्या आवश्यकता है आपकी, क्या आपको धारण करना चाहिए, इसको जो है धर्म की परिभाषा दी गई है, धर्म की संज्ञा दी गई है, धर्म का नाम दिया गया। व्हाट इज इट? भागवतम कहता है धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। सिंपल। क्यों प्राप्त करना? भगवान का प्रेम, इसको रिवर्स लेके चलते हैं कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस? भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का साधन क्या है? किसी का भी प्रेम प्राप्त करना हो तो उस प्रेम को प्राप्त करने का साधन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस? सेवा। प्रभु जी कह रहे हैं सेवा, ताली बजाइए इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया, एब्सोल्यूट परफेक्ट, नो टू ओपिनियंस। जब आप किसी की सेवा में लग जाते हो तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपसे प्रेम करने लग जाता है। जब आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो भगवान आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। अब प्रश्न नंबर दो कि सेवा करने का फॉर्मेट क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं? सेवा करने का नियम क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेवा करने के, क्या फॉर्मूला है? जो उस व्यक्ति को अच्छा लगे, बिल्कुल ठीक, मतलब जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं उसके आदेश के अनुसार सेवा करनी है, अपनी मर्जी से सेवा उस पर नहीं थोपनी। आप अपने पिता की सेवा करना चाहते हैं, यू आर वेरी हैप्पी, मैं अपने पिता की सेवा करता हूं, मैं देखिए मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं पिता की सेवा करता हूं। क्या सेवा करते हैं? पिता थके आ रहे आए हैं, उन्होंने कहा बेटा मेरी टांगे दबा दो, तो गर्दन दबाने बैठ गए। अब पिता ने कहा बेटा मेरी तो टांगे दर्द कर रही हैं, मैं सारा दिन चला हूं, थका हुआ हूं, मेरी टांगे दबा दो। देखो पिताजी बोलो मत, सेवा कर रहा हूं ना, मुझे करने दो, तंग मत करो मेरे को, बिल्कुल। और गर्दन दबाए जा रहा है उनके। दिस इज नॉट सेवा। सेवा इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन हुम यू आर सर्विंग। जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसके अनुसार आपको सेवा करनी है, ना कि अपनी मर्जी से कोई उल जुलूल सेवा उस पर थोप देनी है, फिर कहना देखो जी मैंने आपकी सेवा करी। सॉरी। मतलब अगर आपको जो है प्रेम चाहिए तो प्रेम के लिए आपको सेवा चाहिए, और सेवा का नियम यह है कि जो व्यक्ति आपसे सेवा चाहता है या जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसके कहने के अनुसार सेवा करनी है, अपनी मर्जी से नहीं करनी। उसके कहने के अनुसार अर्थात जो कर्म आप करना चाहते हैं सेवा करने का, वो क्या करनीय है और क्या अकरणीय है वो समझ में आना चाहिए। मतलब करने योग्य कर्म। कर्म की हमेशा परिभाषा याद रखना। चौथे अध्याय के अंदर जो है भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तेरा कर्म एक ही है, जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो अकर्म में कर्म को देखता है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? कर्म कर रहा हूं उसमें अकर्म को देखना, मतलब अकर्म को करना, और जो अकर्म कर रहे हैं उसमें कर्म को करना, इन दोनों में भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? एक ही चीज है टेक्निकली, कि मैं जो भी कर्म करता हूं केवल भगवान के लिए करता हूं, तो मैं कर्म में मेरा हर कर्म जो है अकर्म है, इज नथिंग एल्स। अकर्म कर रहा हूं अर्थात भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, तो मैं कोई और कर्म कर ही नहीं रहा, मैं कर्म, मेरा हर कर्म जो है वो अकर्म है, भगवान के लिए है, भगवान के प्रति है, भगवान की सेवा में है। इसका मतलब है कि मैं जो भी सेवा करूंगा उसमें करनीय क्या है, कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है भगवान को प्रसन्न करना, वर्किंग ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, और किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा अकर्म है, और कोई कार्य नहीं करना। तो धर्म जो है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करने के लिए साक्षात मुझे भगवान की सेवा करनी है, सेवा करने के लिए मुझे जो है भगवान के आदेश का पालन करना है। भगवान तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में यही कहते हैं कि जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो अपने आप को कर्म के फलों से मुक्त कर लेता। अब मेरे लिए करनी है, अब हम कहते हैं धर्म क्या है, करने योग्य कर्म, बड़ी सिंपल सी बात हो गई, पर करने योग्य कर्म में ये देखना है कि मैं कर किसके लिए रहा हूं, एक्चुअल में करने योग्य कर्म किसके लिए है, फॉर होम, समाज के लिए, देश के लिए, एक दूसरे के लिए या भगवान के लिए। तो अल्टीमेटली मुझे जो है धर्म की परिभाषा ये मिलती है कि मुझे करने योग्य कर्म जो है वही मेरा धर्म है, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि करने योग्य क्या है। तो करने योग्य वही है जो भगवान का आदेश है, और कुछ भी करने योग्य नहीं है। करने के योग्य द ड्यूटी, माई ड्यूटी इज ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, टू वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है, और किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना। तो अब यहां आती है बात कि हमें जो है धर्म का पालन करना है। अब धर्म का पालन करने के लिए धार्मिक नियम क्या है, मतलब जो नियम धर्म के लिए बनाए गए हैं, जो नियम धर्म का पालन करने के लिए बनाए गए हैं वो धार्मिक नियम कहलाते हैं। मतलब जो नियम करने योग्य कर्म के हैं, अर्थात जो नियम भगवान की सेवा के लिए हैं, जो नियम भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, जो नियम मुझे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए हैं, जो नियम मुझे इस समाज को भगवान के रास्ते पे लगाने के लिए हैं, वही धार्मिक नियम है। धर्म के नियम क्या है, करने योग्य कर्म जो उसी के नियम है ना, और करने योग्य कर्म क्या है, जब यहां चर्चा आ रही है परा दुखी दुखी की, कि जो दूसरे के दुख में दुखी होता है। दूसरे का दुख दो प्रकार का है, जिसमें भी मेनी वैरायटीज, पर हम शॉर्ट में दो तरह के दुखों की चर्चा करते हैं। एक दुख है कि जो ये भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर में जो हमें दुख हो रहे हैं हमारे मन में, हमारे अंदर या हमारे शरीर में, उनको हम दुख मानते हैं। गरीब हूं जी बड़ा, नौकरी नहीं है, मकान नहीं है, रिश्ता टूट रहा है, वगैरह वगैरह हमारे भौतिक दुख हैं, जो हमें लगता है कि यस इन दुखों से छुटकारा पाना चाहिए। और दूसरी वैरायटी का दुख क्या है, दूसरी वैरायटी का दुख है सबसे बड़ा दुख। सबसे बड़ा दुख क्या है, आपको इस भौतिक संसार में 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, आप इसमें फंसे हुए हो, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। इन 84 लाख योनियों में फंसे रहना, बार बार इनमें आना, बार बार भ्रमण करना, ब्रह्मांडों में घूमते रहना, बार बार मृत्यु आनी, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार बीमारी आनी और बार बार जन्म होना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। तो जब हम चार दुखों की चर्चा करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जब चार दुखों की चर्चा करते हैं, इसके बाद आदि आत्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है, आदि दैविक दुख है, तीन ताप है, तो इन चार दुखों के अंदर सबसे बड़ा दुख क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे खतरनाक क्या है, सबसे बड़ा क्या है। भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्मना विद्यते। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक है यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद हम ब्रह्म मम। पहले मैं कहा कि इस ब्रह्मांड में, इस जगत में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरी में कहा कि मेरे स्वयं धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि प्रज्वलित कर सकती है। मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। इस संसार में न आने का मतलब है पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने कहीं भी पुनर्बीमारी, पुनर्बुढ़ापा मतलब पुनर्व्याधि, पुनर्जरा या पुनर्मृत्यु की बात करी? Did he ever talk of it? कहीं कहा? क्या पुनर्जन्म नहीं होता? स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो लौटकर इस संसार में नहीं आता। इससे क्या अर्थ निकलता? कि चारों तापों में से, चारों दुखों में से सबसे ज्यादा डेंजरस दुख कौन सा है? हमेशा याद रखिएगा, बीमारी उसी व्यक्ति को आती है जिसका जन्म हुआ। जन्म ही नहीं हुआ तो बीमारी आएगी नहीं। बुढ़ापा उसी को आया है जिसका जन्म हुआ है। जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा आएगा नहीं। और मृत्यु उसी को आएगी जिसका जन्म हुआ है। जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु आएगी नहीं। सो इन तीनों तापों में से, जिसमें जरा है, व्याधि है और मृत्यु है, इसका रूट कॉज क्या है? जन्म। जन्म है तो ये तीनों में आप सफर कर रहे हो। जन्म नहीं है तो इनमें सफरिंग्स नहीं है। तो डेंजरस बीमारी है, डेंजरस बुढ़ापा है, डेंजरस मृत्यु है या डेंजरस जन्म है? खतरनाक क्या है? जन्म है। इसलिए भगवान ने कहा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब आप धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? कि आप भगवान के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं। भगवान के आदेशों के अनुसार आप अपने जीवन को चला रहे हैं, अर्थात करणीय कर्म क्या है, करने योग्य कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। कोई डाउट नहीं कि मुझे क्या करना है। एक बच्चा सड़क के किनारे रो रहा है, इज क्राइंग, ढाई तीन साल की उम्र है। एक व्यक्ति आया, पुचकारा, प्यार किया, पूछा बेटा क्या नाम है? नहीं बता पा रहा। पप्पू पप्पू कहता, पप्पू पप्पू। पिता का नाम क्या है? पिताजी। माता का नाम क्या है? अम्मा। अरे नाम तो बताओ, अम्मा। पिता का नाम क्या है? पिताजी। तो कहां रहते हो? पता नहीं। He is lost, खो गया है, बिछड़ गया है। अब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो कहता है, रो रहा है बड़ी देर से, बहुत कष्ट में है, भूखा होगा, बड़ी भूख लगी होगी इसको, चलो इसके लिए थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले आता हूं। तो बिस्किट ले आया, ब्रेड ले आया, कुछ और स्पून टॉफी ले आया, कुछ ला के उसको दे दिया। बच्चे को लगा समथिंग न्यू इज देयर, तो बच्चा जो है उस चीज को देख के थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा अपना, उसके बाद चुप हो गया। देखा भूखा था बेचारा, भूखा था। और व्यक्ति ने कहा, अब ये खुश हो गया है, भूख मिट गई है, और व्यक्ति चला गया। बच्चा आधा घंटा एक घंटा अपना खेला बिस्कुट के साथ, टॉफी के साथ, गोली वाली जो भी दिया था, उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया। एक और व्यक्ति आया, ये बच्चा रो रहा है, वही पूछा क्या नाम है? पप्पू। पिता का नाम? पिताजी। माता का नाम? अम्मा। कहां रहते हो? पता नहीं। अच्छा, रोए जा रहा है ये, इसको भूख तो इसकी ठीक हो गई है, बिस्कुट भी पड़े हुए हैं, दूध भी है, टॉफियां भी हैं, सब कुछ है। ऐसा हो सकता है इसको तकलीफ हो गई हो, बीमारी, पेट में दर्द हो गई हो, चलो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से इसको इलाज करा देते हैं। डॉक्टर के पास गए, दवाई दिलवाई, बच्चे को नई चीज लगी, समथिंग न्यू, मीठा मीठा शरबत था, उसने पिया, थोड़ी देर के लिए खुश रहा, आहा देखा ठीक हो गया, बीमार था ना, कितना बढ़िया काम किया मैंने, और वो आदमी चला गया। बच्चे के पास दवाई भी रख दी, थोड़ी देर बीती, बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया, इज वीपिंग। तीसरा आदमी आया, बोले बच्चा रो रहा है, बिस्कुट भी रखे हैं, दूध भी रखा है, टॉफियां भी हैं, गोलियां भी हैं, ब्रेड भी है, सभी कुछ है, दवाई भी रखी हुई है, तो ये क्या हुआ है इसको? अच्छा नाम पूछा, फिर वही क्या नाम है जी? पप्पू। पिता का नाम पिताजी, माता का नाम अम्मा, कहां रहते हो पता नहीं। उसने उठा के अनाथालय में जमा करा दिया, ऑर्फन हाउस। बच्चा अनाथालय पहुंच गया, अनाथालय वाले ने पूछा कहां मिला, बोला अभी सड़क पे मिला था, रो रहा था, दवाई भी रखी थी, खाना भी रखा था, कुछ रखा था, बच्चा चुप नहीं कर रहा था, मेरे को समझ में आया नहीं, मैं ऐसे अनाथालय में दे गया। अच्छा रख लेते हैं भाई, हमारा तो काम ही यही है, भूले भटके बच्चे आते हैं, हम उन्हें रख लेते हैं। बच्चा रोया जा रहा है। नेक्स्ट डे एक कोई चौथा व्यक्ति पहुंचा, फिर तुम्हारे अनाथालय में रोने की आवाज बड़ी आ रही है, कौन रो रहा है? बोले एक नया बच्चा आ रहा है, रोए जा रहा है, चुप नहीं कर रहा, बिस्कुट भी दे दिए, ब्रेड भी दे दी, दूध भी दे दिया, दवाई भी दे दी है, सब कुछ कर लिया पर चुप नहीं हो रहा। अच्छा चलो देखते हैं। देखने गया, मोबाइल निकाला, फोटो खींची, अखबार में छाप दी, गुमशुदा की तलाश, ढूंढो भैया किसका बच्चा है। नेक्स्ट डे जो है पेरेंट्स आ गए, हमारा बच्चा। बच्चे के पास गए तो बच्चा दोनों बाहें उठा के माता पिता से मिला, माता पिता ने दोनों बाहें उठा के उसको गले लगा लिए, बच्चा खुश हो गया। परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख से चारों व्यक्ति दुखी हैं। पहला भी दुखी है, उसने खाना खिलाया, फ्री लंगर लगा दिया, लंगर खाओ जी आके लाइन लगा के, निर्जला एकादशी को लंगर लगाया जा रहा है। निर्जला एकादशी को दूध और रूह अफ़ज़ा पिलाया जा रहा है। निर्जला जिस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना है उस दिन खूब खिलाया पिलाया जा रहा है, लंगर लगा दिया। दूसरा व्यक्ति वो भी कर रहा है, दूसरे के दुख से दुखी है, उसने अस्पताल बना दिए, फ्री औषधालय बना दिए, फ्री डिस्पेंसरी, फ्री हॉस्पिटल। अलग बात है कि अस्पताल में गरीबों का नहीं अमीरों का इलाज होता है, बट अपनी जेब भरती है, बट ही इज डूइंग चैरिटी। नाम क्या है? आई एम डूइंग चैरिटी, मैं बड़ा चैरिटी का काम कर रहा हूं। परा दुखा दुखी हूं, दूसरों के दुख से बड़ा दुखी हूं। देखिए मैंने इतने 100 करोड़ रुपया लगा के अस्पताल बना दिया। तीसरा व्यक्ति आया, देखो मैं भी तो परा दुखा दुखी हूं, मैं भी तो दूसरे के दुख से दुखी हूं। अच्छा जी आपने क्या किया? मैंने अनाथालय बनवा दिए, अंध महाविद्यालय बनवा दिए, मैंने ऐसी जगह बना दी जहां पर कि लोग आके रह सके। तीनों व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी हैं, तीनों की कैटेगराइजेशन परा दुखा दुखी है, पर लेवल क्या है? चौथा व्यक्ति आया, वो भी परा दुखा दुखी है, परंतु उसने उस बच्चे को माता पिता से मिलवा दिया है। इस पुट इन देयर, समाज के अंदर औषधालय बनाने वाले भी हैं, फ्री फूड्स फॉर लाइफ, फूड सेवा करने वाले भी हैं, फ्री अनाथालय, अंध महाविद्यालय, वृद्धाश्रम, ये आश्रम वो आश्रम बनाने वाले भी हैं, परंतु बेस्ट कौन है? जो पिता से मिलवाता है। तू वैष्णव है, बेस्ट, वी आर दी बेस्ट, कि हम जो है आपको परम पिता से मिलवाते हैं। दैट इज वाई जब हमसे कहते हैं कि इस्कॉन जो है अस्पताल नहीं चलाता, इस्कॉन अनाथालय नहीं चलाता, इस्कॉन अंध महाविद्यालय नहीं चलाता, इस्कॉन फ्री लंगर नहीं देता, बट वी से वी गिव यू द बेस्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि हम आपको वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आप परम पिता से मिल सकते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत में आगे लेके जाते हैं। इसीलिए सबसे परा दुखा दुखी, सबसे बेस्ट परा दुखा दुखी जो है वैष्णव है, जो दूसरे के दुख में दुखी होता। दिस इज द क्वालिटी व्हाट वी डू, इसीलिए हम बाकियों से अलग हैं। इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या जो लोग भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पे चलते हैं, दे नो क्या करनीय है और क्या करनीय नहीं है, दे अंडरस्टैंड कि हमारे लिए बेस्ट कर्तव्य क्या है, व्हाट इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल, एंड बेस्ट आउट ऑफ ऑल इज कि हम लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म, मैं अभी 4 दिन का सेमिनार दे के आया हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, उसमें चर्चा उठी थी। लोग कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है, हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है। कहता मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मुस्लिम, ईसाई, अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से धर्म की परिभाषा करते हैं। जब हमने एक बात कही कि धर्म है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि व्हाट इज धर्म। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? नमकीन। पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी, तरलता। अग्नि का धर्म क्या है? ऊष्मा और प्रकाश, गर्मी देता है, रोशनी देता है। इसका मतलब यह है कि धर्म जो है किसी भी वस्तु का वो स्वाभाविक गुण है जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। आप आए देखिए, बाजार में नई चीनी आई है, ये नमकीन है, ये कड़वी है, ऐसा होता है क्या? कल टाटा का नया नमक आ गया, देखो मीठा नमक आया है, ऐसा पॉसिबल है? है पॉसिबल। ये देखो ये अग्नि है, इसके ऊपर पतीला रखेंगे ना तो फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, इसमें गर्मी नहीं। इज इट पॉसिबल? नहीं। मतलब किसी भी वस्तु का स्वाभाविक गुण जो है वो उसका धर्म कहलाता। तो हमारा धर्म क्या है उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये शरीर मान लीजिए कि पूर्ण है, कंप्लीट है, होल है। ये हाथ उसका एक अंश है। तो ये हाथ इस शरीर के लिए क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। ये कान शरीर की सेवा कर रही है, आंख शरीर की सेवा कर रही है, पैर शरीर की सेवा कर रहे हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अंश है, अंश उसका स्वाभाविक गुण है पूर्ण की सेवा करना। शरीर पूर्ण है, हाथ अंश है, तो जो अंश है, जो एक पार्ट है, उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है पूर्ण की सेवा करना। भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, तो अंश होने के नाते हमारा धर्म क्या है? पूर्ण की सेवा करना। तो जीव का स्वाभाविक गुण क्या है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता? वो है पूर्ण, अर्थात जिसका वो अंश है उसकी सेवा करना। तो जीव का धर्म है, अंश का धर्म है अंशी की सेवा करना। तो दिस इज धार्मिक नियम। सिंपल धार्मिक नियम क्या है? धार्मिक नियम है भगवान की सेवा, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही धर्म का कायदा और कानून है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का मतलब है भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करना धर्म है। जब हम कहते हैं धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और उसको हौले हौले करके एनालाइज करते हैं, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि करने योग्य कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, क्या करनी है। करनी है केवल एक चीज है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना और कुछ नहीं। दैट इज द अल्टीमेट। यहां चर्चा हो रही है कि जब व्यक्ति दूसरे जीवों के दुखों से दुखी होता है, मैं आपके इकोनॉमिक लाइफ, आपकी फाइनेंशियल, सोशल, हेल्थ, मेडिकल, हर चीज के प्रति दुखी हूं, परंतु उससे ज्यादा मैं दुखी हूं कि आपको इस 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकालने का रास्ता आपको मालूम होना चाहिए, मैंने सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं सुन रहे हो तो मुझे दुख होता है, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो तो मुझे दुख होता है, आप उस पर नहीं समझ पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो तो मुझे दुख होता है। तो मुझे ये दुख होता है कि आपके दुख में मुझे दुखी होना। अब देखिए जो एडवांस डिवोटी है उसकी क्या कंडीशनिंग है, उसको क्या सोचता है, व्हाट इज द वे ही थिंक्स। जब हम कहते हैं कि जब हमें शरीर मिला है तो हमें उसके अंदर कुछ अच्छे फल भी प्राप्त हो रहे हैं और कुछ बुरे फल भी प्राप्त हो रहे हैं। हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है, परिवार में फायदा हो रहा है, घर गृहस्थी में फायदा हो रहा है, बिजनेस में फायदा हो रहा है, वी आर वेरी हैप्पी। हमें नुकसान भी हो रहा है, परिवार में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, रिलेशनशिप में नुकसान हो रहा है, तो हम बड़े दुखी होते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मेरे को कुछ पाप के फल मिलने हैं, कुछ पुण्य के फल मिलने हैं। ये प्रभु जी आए, बहुत अच्छा कर दिया, हा हा मजा आ गया, एक पुण्य फल भौतिक संसार में मिल गए। ये आए, बुरा कर दिया, एक पाप फल भौतिक संसार में मिल गया। जिन्होंने अच्छा किया था इनके तो मैं गुणगान करता हूं, इनकी तारीफ करता हूं, इनको प्रेस करता हूं, दंडवत करता हूं, हर वक्त इनके सुख दुख का ख्याल रखता हूं। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था उनकी टांग खींचता हूं, गाली गलौज करता हूं, बुरा कहता हूं, जगह जगह चुगली निंदा करता हूं, बहुत बुराई करता हूं। एक ने पुण्य फल कम किया है, 10 में से 9 रह गए। एक ने पाप फल कम किया है, 10 में से 9 रह गए। तो पाप फल कम होना अच्छा है कि पुण्य फल कम होना अच्छा? पाप फल कम होना अच्छा है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए एज ए डिवोटी, मेरा कर्तव्य क्या हो जाएगा? हाउ डू आई थिंक? मेरी सोच यह बनेगी कि ये जो मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है मेरे कर्मों के फल के अनुसार हो रहा है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरे पुराने कर्मों के फल हैं जो आज प्रस्फुटित हो रहे हैं, जो आज मेरे सामने आ रहे हैं, तो मुझे इनको सहने का अभ्यास करना चाहिए। ना ये कसूरवार है पुण्य फल भुगताने के लिए, अलग पुण्य फल मिलेगा तब भी शरीर भोगना पड़ेगा, ना ये कसूरवार है मेरा पाप फल कम करने के लिए। जो भी हो रहा है मेरे भाग्य में, जो प्रारब्ध है, जो मेरे फल जो कि इस वक्त मैच्योर हो चुके हैं, मुझे भोगने हैं, उनके अनुसार हो रहा है, इनका कोई दोष नहीं, इनका कोई दोष नहीं है। मैं इन्होंने मुझे दुख दिया है परंतु मैं दुखी नहीं हूं। बट वैष्णव क्या कहता है? वैष्णव कहता है कि परा दुखा दुखी, मैं इनके दुख में दुखी हूं। इनका क्या दुख है? मैंने पाप कर दिया, इनके साथ मैंने बुरा किया है, मैंने पाप किया है। उसने पाप किया है मेरे पाप फल को कम करने के लिए, वो निमित्त बना है मेरे पाप फलों को भुगतवाने के लिए। तो वैष्णव क्यों दुखी होगा कि इनके पाप फल को किस तरह से कम किया जाए? इनसे जो गलत काम हुआ है मेरे फल को भुगतवाने के लिए, भगवान ने इनको निमित्त बनाया है, तो इनसे भी पाप कर्म हो गया है मेरे प्रति, तो उस पाप फल को कम कैसे किया जाए? तो वैष्णव क्या करेगा कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करेगा। ही विल एसोसिएट मोर एंड मोर, क्योंकि वो जानता है कि इनका जो पाप फल है वो कम कैसे होगा? भगवान की भक्ति में लग के। पाप फल करने का और कोई तरीका नहीं है। ये नहीं है तुमने मुझे पाप किया 1,00,000 रुपया लो चलो जी तुम्हारा फल कम हो जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पाप फल कम होने का मतलब यह है कि उनके अंदर जो एक उनसे जो कार्य हो गया है उस कार्य के फल को समाप्त करने का एक ही तरीका है। और भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं 4वें अध्याय के 37वें श्लोक में कि जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह से ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म फलों को जला के भस्म सात कर देती है। तो आई गिव मोर एंड मोर नॉलेज, ज्ञान, फिर ज्ञान को बोलता हूं विज्ञान में डालो कि इसको प्रैक्टिकल शेप दो, इसके अंदर आगे बढ़ो, कृष्ण भावनामृत में उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता हूं ताकि जो पाप इससे हो गया है मेरे प्रति हुआ है वो इसको न भोगना पड़े। ये पाप करने के बाद डिवोशनल सर्विस से दूर जा सकता है, उसको अपराध की संज्ञा दे सकते हैं, राधात अर्थात अपराधनात अपरागता, कि ये अपराध कर बैठा है, इसकी भक्ति से दूरी हो रही है अपराध करने से, तो मुझे इसकी भक्ति की दूरी को समाप्त करना है, भक्ति में इसे दोबारा लगाना है, जिससे कि इसका अपराध जो है जो इसने पाप कर दिया है वो काम हो जाए, समाप्त हो जाए और ये कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े और ये भगवान के धाम जा सके, इसलिए मैं परा दुखा दुखी हूं। इसलिए नहीं कि उसने मेरे प्रति कुछ किया तो मैंने उसके प्रति जो है उल्टे सीधे विचार लाने शुरू कर दिए, उसके बोलना बंद कर दिया, हरे कृष्णा करनी बंद कर दी, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, टांग खींचनी शुरू कर दी, किसी तरीके से इसको नीचा दिखा दूं ऐसा कार्य कर दिया। नो, मुझे उसको अपलिफ्ट करना है। यही है परा दुखा दुखी, यही एक वैष्णव का कर्तव्य है। जब हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म के नियमों में चलते हैं, तो ये बातें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती चली जाती हैं, हम इनसे दूर नहीं रह पाते। जब हम दूसरे को बताते हैं कि धर्म के नियम क्या हैं, धार्मिक नियमों का पालन कैसे करना, अब आपसे कहा कि आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना, तो उसके लिए आपको जो है कुछ नियमों का पालन करना है, आपको चार नियमों का पालन करना है। तो चार नियमों का पालन जो है जब करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है, अर्थात आप धार्मिक नियमों के अनुसार चल रहे हो, अपने आप को भगवान की भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा रहे। यही बात प्रभुपाद जी ने कोट करी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवियस्तनी। वो अगर टेक्निकली देखा जाए तो चंडाल है, हाथी है, गाय है, कुत्ता है, ब्राह्मण है, ये पांचों में भेद है। समता किस चीज में है? समता है इन पांचों के अंदर परमात्मा है, उसको देखने में समता है। इन पांचों में आत्मा है, उनको देखने में समता है। ये पांचों भगवान का अंश है, उसको देखने में समता है। आप हर कार्य में सम नहीं रहते। अब अपने शरीर के बारे में समता नहीं है आपके अंदर, है क्या? हाथ का कार्य पैर से नहीं लेते, पैर का कार्य हाथ से नहीं लेते, शरीर के और अंग में समता नहीं है। आंख का कार्य कान से नहीं होता, कान का कार्य आंख से नहीं होता, डिफरेंट है, देयर इज अ डिफरेंस। आप उंगलियों में समता नहीं है, किसी को फिंगर करना हो तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना। आपके हर अंग के अंदर उसकी वर्किंग में, उसके बिहेवियर में, उसके एक्शन में विषमता है, डिफरेंशन डिफरेंस है। परंतु शरीर आपका है, आप उंगली में चोट लग जाए तब भी उसका इलाज करेंगे, पैर में चोट लग जाए तब भी इलाज करेंगे, हाथ में चोट लग जाए तब भी इलाज करेंगे, जीभ में चोट लग जाए तब भी इलाज करेंगे, उसमें आपकी समता है। वो सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं आप। इसी तरह जब आप हाथी को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, गाय को देखते हैं, सब में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये समता है। पर कार्य में भी समता है, व्यवहार आपका अलग है। आप चरण छूते हो, दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, चंडाल को नहीं करते, ब्राह्मण को करते हो, यू डोंट डू इट। आप दूध पीते हो तो किसका पीते हो, गाय का कि कुतिया का? गाय का पीते हो। व्यवहार में विषमता है, परंतु जो विनय विद्या विनय, जो विद्या से और विनयशीलता से ब्राह्मण है, जो संपन्न हो गया है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो इन सब में अलग अलग व्यवहार रखते हुए भी सब में भगवान के दर्शन करता है। कि सभी भगवान का अंश है, ये परा दुखा दुखी होना है, ये समझना है कि मैं दूसरे के दुख में दुखी हूं। अगर आपके द्वार के ऊपर कोई आता है, चाहे प्राणी भी आता है, तब भी आप उसको भगवान का प्रसाद खिलाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। गाय आती है उसको खिला देते हैं, पर हाथी आके खड़ा हो गया, मैं तो आपसे खा के ही जाऊंगा, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद के रूप में कुछ उसे खिला दिया। वो अल्टीमेटली क्या है, उसको भी उसकी जो है चेतना शुद्ध हो रही है, उसको भी एक जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है भगवान का प्रसाद प्राप्त करने का। एक बार मैं पढ़ रहा था तो प्रश्न ये आया, प्लीज क्षमा करिए किसी को हर्ट करे तो, ये कई बार जो है डिवोटीज जो है थोड़ा बहुत प्लेट में लगा हुआ छोड़ देते हैं, बिल्कुल साफ नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि निशा प्लेट तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। द आंसर केम, कुछ लोग साफ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं वो भी बड़ा अच्छा करते हैं। ये नहीं कि ज्यादा छोड़ देना, जो लगा रह जाता है, लगा हुआ जो रह जाता है। बोले क्यों? कहते जब ये धुलता है, जल के साथ जाता है, तो वहां भी अनेक प्राणी है जिनको इसको खाने का बेनिफिट मिलता है, उनकी डाइट है, उनका फूड है, उनके लिए प्रसाद है। तो उनका जो ये हक है, उनका जो ये फायदा है, उसको हम कैसे छोड़ दें। तो थोड़ा बहुत लगा हुआ जो है प्लेट में, जिसको कई बार नहीं साफ कर पाते हैं, अगर वो चला जाता है तो उसके बारे में ज्यादा ऑड फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कृष्ण प्रसाद, उनको भी मिलना चाहिए। तो परा दुखा दुखी वैष्णव जो है दूसरे के दुख में दुखी होता है, और हमको भी ऐसे वैष्णव दूसरे के दुख में दुख है, क्या करते हैं हम उसके लिए? व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग वी डू फॉर अदर्स? समाज के अंदर हम लोगों के प्रति दुखी हैं, हम हरेक का इलाज तो नहीं कर सकते, पर उस इलाज का बीज डाल देते हैं हम। कैसे डालते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशंस, वी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, कृष्णा कॉन्शियस बुक्स। कभी तो बम फटेगा, कभी तो पढ़ेगा, कभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा, तब समझ में आएगा कि मुझे कृष्ण भावनामृत में कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्यों आना है इसके अंदर। देन ही कम्स टू टेम्पल, देन ही एसोसिएट्स विद डिवोटीज, देन ही प्रोग्रेसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इवन छोटे से छोटा एक्ट जो है भगवान के आदेश के अनुसार किया हुआ, बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पहले भगवद गीता को फेंक दिया, जमन डिवोटी ने भगवद गीता को फेंक दिया, एक 13 साल की लड़की ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको फेंक दिया, लड़की ने उठाया फिर उसको दे दिया, उसने कुड़कुड़ाते हुए गुस्सा करते हुए उसको कुछ नहीं दिया, चली गई। उसके जीवन में कोई 15 साल बाद की, 14-15 साल बाद की बात है, ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी समस्याएं आई, उसको समझ में नहीं आया। तो उसको याद आया कि आज से 15 साल पहले एक छोटी सी लड़की ने मेरे से कहा था कि जब आप दुखी हो जाओ, जब आपको वो रास्ता न सूझे, तब आप भगवद गीता पढ़ना, दिस विल टेक अवे योर मिजरीज, आपको दुखों से छुटकारा पाने का उपाय इसके अंदर है। तब उसने भगवद गीता खोली, सिर्फ भूमिका पढ़ी, इंट्रोडक्शन बस, और कुछ नहीं पढ़ा। भूमिका पढ़ी एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ बार भूमिका पढ़ने के बाद देन ही सर्च्ड फॉर द टेम्पल, यहां पे लोकल टेम्पल कहां है। दिस गर्ल ऑफ 13 ईयर्स वॉज 28 नाउ। उसने पूछा उस लड़की का नाम, एक लड़की थी, बुक पहचान लिया, शक्ल मिलती होती है, पहचान लिया। उसने जाके लड़की के पैरों में सर रख दिया अपना, एंड देन ही बिकेम ए फुल टाइम डिवोटी, फुल टाइम डिवोटी बन गया वो। देन ही रियलाइज, उसने बार बार क्षमा मांगी उससे कि मैंने आपके प्रति अपराध किया था, इसका फल मुझे अब 15 साल के बाद मिला है, आई एम सो सॉरी फॉर इट। और अब जो है उसके बाद ग्रेजुअली ही केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बिकेम ए फुल टाइम डिवोटी। ऐसी घटनाएं होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं। इफ यू रीड हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो बहुत सारे लोगों के आपको बहुत सारे ऐसे उद्गार मिलेंगे। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है, कोई प्रसाद खाने से हुआ है, कीर्तन अटेंड करने से हुआ है, कोई यात्रा अटेंड करने से हुआ है, देयर सो मेनी थिंग्स। बट अल्टीमेटली परा दुखा दुखी वही है, वैष्णव वही है जो दूसरों को इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के रास्ते पर अग्रसर करता है, उनको आगे बढ़ाता है। उससे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।